तारीख 31 अक्टूबर दिन शनिवार, मैं हूं मोहनलाल शर्मा। बिहार में तीन चरणों का मतदान संपन्न हो चुका है, दो चरण बाकी हैं। लेकिन तीसरे चरण तक आते आते सभी राजनीतिक दल मुद्दों को छोड़कर राजनीतिक बयानबाजी में उलझकर रह गए हैं। भाषणबाजी में अब जो तीर चल रहे हैं उनका विकास और जनता के बुनियादी मुद्दों से कोई सरोकार नहीं। उदाहरण के तौर पर अमित शाह का वो बयान जिसमें उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी गठबंधन नहीं जीता तो पाकिस्तान में पटाखे फूटेंगे। आज इसी विषय पर चर्चा, कहां गए वो चुनावी मुद्दे। कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए मुफ्त फोन कीजिए 1811-7000 और 1811-7001 पर। लेकिन पहले बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार प्रगति सक्सेना से। मिस्र में रूस का एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। मिस्र के एक अधिकारी ने कहा है कि दुर्घटनाग्रस्त रूसी विमान पर सवार सभी 224 लोगों की मौत हो गई है। एयरबस A321 मिस्र के शर्म अल शेख से सेंट पीटर्सबर्ग की तरफ जा रही थी, लेकिन अनुमान लगाया जा रहा है कि उत्तरी सिनाई से गुजरते हुए इसमें कुछ तकनीकी खराबी आ गई और लैंडिंग की कोशिश में विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। मिस्र के प्रधानमंत्री शरीफ इस्माइल ने इस संकटपूर्ण स्थिति से निपटने के लिए एक समिति के गठन की घोषणा की है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने देश में एक दिन के लिए राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है। रूस के आपात स्थितियों के उपमंत्री व्लादिमीर स्टेपनोव ने कहा कि रूस दुर्घटना स्थल पर अपना एक दल भेज रहा है। हमें रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से निर्देश मिले हैं कि हम इस घटना स्थल पर जाएं। आपात स्थितियों के मंत्रालय के प्रमुख व्लादिमीर पुष्कोव इस ऑपरेशन का नेतृत्व करेंगे। बचाव कर्मियों और मेडिकल सहायता कर्मियों के साथ इस दल में परिवहन मंत्रालय जांच समिति, उड्डयन जांच समिति, श्रम मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रतिनिधि भी होंगे। ये थे व्लादिमीर स्टेपनोव के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया है। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने 11 नए मंत्रियों को मंत्रिमंडल में शामिल किया है। 9 को अधिक जिम्मेदारी सौंपी गई है। 6 अन्य विधायकों को भी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार मिला है। नए मंत्रियों में बलवंत सिंह रामूवालिया भी हैं, जो ना तो विधायक हैं और ना ही विधान परिषद के सदस्य। 2 दिन पहले अखिलेश यादव ने 5 वरिष्ठ कैबिनेट मंत्रियों को हटा दिया था। चरमपंथियों द्वारा मारे गए धर्मनिरपेक्ष बांग्लादेशी ब्लॉगर अभिजीत रॉय के प्रकाशक पर राजधानी ढाका में उनके दफ्तर पर ही हमला किया गया है। अज्ञात हमलावरों ने अहमदुर रशीद तुतुल और अन्य 2 लोगों पर चाकू से हमला किया। इनमें से एक की हालत गंभीर है। हमले के तुरंत बाद ब्लॉगर रणदीपन बसु ने फेसबुक पर लिखा कि अहमदुर रशीद के साथ उन पर भी हमला हुआ है। इसके कुछ घंटों बाद एक अन्य प्रकाशक फैसल अरफिन दिपोन की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। रोमानिया की राजधानी बुकारेस्ट के एक नाइट क्लब में लगी आग में 27 लोग मारे गए हैं और करीब 150 लोग घायल हुए हैं। बेसमेंट में चल रहे इस नाइट क्लब में सैकड़ों लोग एक बैंड का संगीत सुन रहे थे जब यह हादसा हुआ। रोमानिया के राष्ट्रपति क्लाउस योहानिस ने कहा है कि सुरक्षा नियमों के पालन में लापरवाही की वजह से यह हादसा हुआ। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक ये आग पटाखों की वजह से लगी। सऊदी अरब के विदेश मंत्री अब्दुल जुबैर का मानना है कि यमन का युद्ध अब अपने अंतिम पड़ाव पर है। बहरीन में सुरक्षा पर हो रहे एक सम्मेलन में उन्होंने कहा कि हूती विद्रोहियों से एक राजनीतिक समझौता हो सकता है। सऊदी अरब यमन की सरकार का समर्थन करता है और ये फिलहाल हूती विद्रोहियों के खिलाफ गठबंधन सेना की अगुवाई भी कर रहा है।
नेता बोले,
अफसर बोले,
पैसा बोला,
बंदूक बोली,
अभिनेता विलेन बोले,
नहीं बोल सके तो बस
आप। अब इंतजार खत्म, जुबान पर लगे ताले खोल, बीबीसी इंडिया बोल।
बीबीसी हिंदी सेवा के कार्यक्रम इंडिया बोल में आपका स्वागत है। विषय अब तक आप जान चुके हैं, एक बार फिर से दोहरा देता हूं कि क्या बिहार के चुनाव में राजनीतिक बयानबाजी ने विकास के मुद्दे को खत्म कर दिया है। उदाहरण के तौर पर अमित शाह का बयान जिसमें उन्होंने कहा कि बीजेपी गठबंधन अगर नहीं जीती तो पाकिस्तान में पटाखे फूटेंगे। जंगल राज 2 की बात लगातार हो रही है। लालू ने शैतान के जवाब में उन्हें नरभक्षी कहा। नीतीश का तांत्रिक के साथ मिलने का जो वीडियो है वो वायरल हुआ, उस पर बहुत सारी बातें हुई। टेलीफोन लाइनें खुल चुकी हैं, फ़ोन उठाइए, कार्यक्रम में शामिल हो जाइए। और मेरे साथ स्टूडियो मौजूद हैं बिहार की नब्ज़ परखने वाले वरिष्ठ पत्रकार उर्मिलेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टूडियो में। और बिहार से टेलीफोन लाइन पर पंकज प्रदर्शी मौजूद हैं, जो कि चुनावी रंग की खबरें आप तक पहुंचा रहे हैं। पंकज इस समय रक्सौल में हैं। इसी रक्सौल में अमित शाह ने पाकिस्तान में दिवाली मनाए जाने वाला बयान दिया था। सबसे पहले उर्मिलेश जी, आप ही से एक टिप्पणी लेते हैं कि टिप्पणी की शुरुआत फेसबुक पर एक टिप्पणी से कर लेते हैं। हिमालय राज लिखते हैं, सच बात यह है कि बिहार की विधानसभा के चुनाव में विकास की बात करें तो जैसे सुनने को कान तरस गए। जितनी भी चुनावी सभाएं हुई उसमें बस नेता से लेकर मंत्री तक एक दूसरे की आलोचना करते आए, मुद्दे कहाँ गए?
नहीं देखिए, ये तो हमारे देश में सिर्फ पहली बार यहाँ नहीं हो रहा है, बिहार में आमतौर पर जो जनता के लिए ज़रूरी मुद्दे हैं, पता नहीं क्या हो गया है, बरसों से मैं देख रहा हूँ, आज केवल बिहार की बात नहीं कह रहा हूँ, कि वो असल मुद्दे जनता के गायब हो जाते हैं चुनाव में, और कुछ जुमले उछलते हैं जिनको बाद में बड़े नेता कह भी देते हैं कि हाँ वो सिर्फ जुमले ही थे, और वही चुनाव के सबसे बड़े मुद्दे बन जाते हैं। ये बड़ा दुर्भाग्यजनक है। देखिए, अमेरिका में भी चुनाव होता है, वो भी बड़ा कॉरपोरेट फंडेड चुनाव है, लेकिन वहाँ भी सेहत का मुद्दा, बीमा का मुद्दा बड़े मुद्दे बन जाते हैं समाज के। लेकिन अपने यहाँ जैसे बिहार है, बिहार में मैं समझता हूँ कि जो तीन सबसे बड़े मुद्दे हैं, मेरा मैं जो जो थोड़ी बहुत समझ है बिहार की, वो है शिक्षा का मसला, दूसरा मसला है सेहत का यानी स्वास्थ्य सेक्टर
बुनियादी ढांचा का,
और तीसरा मुद्दा जो सबसे बड़ा है वो औद्योगिक विकास का है, लैंड रिफॉर्म से जुड़ा हुआ, क्योंकि लैंड रिफॉर्म जब तक आप नहीं करते तब तक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को गति नहीं मिलेगी। तो ये चार मुद्दे अगर मैं देखता हूं तो सबसे बड़े हैं।
एक किसी रणनीति के तहत ये मुद्दे गायब हुए हैं, राजनीतिक दलों ने गायब किए हैं?
बिल्कुल, और इसके लिए देखिए सिर्फ सियासतदानों को हम दोषी न ठहरा रहे हैं, सियासतदानों पर दबाव डालने वाला मीडिया भी इसके लिए कम जिम्मेदार नहीं है, समाज के अन्य स्टेक होल्डर्स जो हैं वो भी कम जिम्मेदार नहीं हैं, वे जातीय सभाएं, वे सामुदायिक लोग, सिविल सोसाइटी का डेवलपमेंट बिहार में उस तरह से कम हुआ है, अर्बनाइजेशन कम है, लेकिन इसके बावजूद जो कुछ है वहाँ, आखिर वो क्यों नहीं दबाव डाल करके वहाँ के सियासतदानों को, और जो बाहर से सियासतदान बिहार के चुनाव में मुख्य भूमिका अदा कर रहे हैं उन पर दबाव डालते हैं, वो कैसे पाकिस्तान की बात उठाते हैं, वो उठाते हैं बीफ की बात, वो उठाते हैं न जाने कैसी कैसी बातें, अब इसका क्या मतलब है बिहार के आवाम के जो मसले हैं उनसे? मुझे लगता है बिहार की आवाम में बहुत समझदारी है, बिहार का आवाम जरूर सोच रहा होगा,
बिल्कुल सोच रहा होगा, जनता क्या सोच रही है। सीधे चल रहे हैं पंकज प्रदर्शी के साथ, जो कि रक्सौल से हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। पंकज, मैं आपको इससे पहले कि आपकी राय जानूं, इस मुद्दे को लेकर, बयानबाजी के मुद्दे को लेकर आप क्या सोचते हैं? वहां पर आप लगातार इस इलेक्शन को कवर कर रहे हैं, आप क्या कहेंगे?
देखिए मोहनलाल जी, होता ये है कि जिस तरह की बयानबाजी हो रही है, और दोनों कैंपों से हो रही है, ऐसा नहीं कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही बोल रही है, दोनों कैंपों से हो रही है, लेकिन जिस तरह की तलखी देखने को मिली है बिहार की राजनीति में, बड़े अफसोस की बात है कि विकास का मुद्दा बहुत पीछे छूट गया है। और जैसे आपने सुना होगा, गोमांस पे चर्चा हुई, फिर शैतान पे हुई, ब्रह्म पिशाच तक बात पहुंची, लालू प्रसाद यादव ने कबूतर की बात की, सरसों और धुआं उड़ाने की बात की, फिर लालू प्रसाद यादव की बेटी को सेट करने की बात हुई, जिस पर मोदी जी के बयान पर काफी प्रतिक्रिया हुई लालू यादव कैंप की ओर से, और फिर इस पर से सबसे बड़ा बयान कुछ दिन पहले यहीं से, जहां पर मैं इस समय खड़ा हूं, रक्सौल में अमित शाह की सभा थी, उसमें उन्होंने ये कहा कि अगर भाजपा हारती है तो पाकिस्तान में पटाखे फूटेंगे। तो इस पर बहुत ज्यादा प्रतिक्रिया विपक्ष की ओर से आ रही है, लेकिन हाँ, भाजपा समर्थक कहीं ना कहीं इस चीज को जस्टिफाई भी करते हैं। मेरे साथ कुछ लोग हैं इस समय रक्सौल के। जी, आपका नाम क्या है?
इंद्रदेव दास
जी, ये बताइए। हाँ चंद्रदेव दास जी, ये बताइए कि अमित शाह ने यहाँ जो बयान दिया उस पर आप क्या सोचते हैं?
गलत बयान दिए, बयान ठीक नहीं दिए।
क्या
नहीं बोलना चाहिए उनसे?
और जितनी ये विकास का मुद्दा पीछे छूट गया, आप मानते हैं
विकास का बातें नहीं करते?
तो आपके यहाँ क्या नेता जो चुनाव लड़ रहे हैं वो विकास की बात नहीं करते?
अभी तक तो उनका जो नेता है उनके अलावा जो लोग हैं वो लोग तो कुछ ना कुछ करते हैं, सोचते हैं, वही बात
जी। और आपका नाम?
मेरा नाम सद्दाम हुसैन हूँ।
सद्दाम जी, आपने सुना कि किस तरह इस बार चुनाव में जो बयानबाजी हो रही है उसको लेकर क्या फील करते हैं एक आम नागरिक होने के नाते आप लोग?
हमारा तो यही कहना है कि अगर मतलब कि जब नेता लोग ऐसी बात करेंगे तो फिर हम लोग क्या कह सकते हैं? यहाँ पे तो विकास का कोई मुद्दा ही नहीं है अभी तक, तो मतलब कि रक्सौल में जैसे पहले से था वैसे का वैसा ही, अभी तक विकास का कोई बात नहीं है।
लेकिन जैसे सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की ओर से ऐसा नहीं हो रहा है, विपक्ष के लोग लालू प्रसाद यादव और जनता दल यूनाइटेड की ओर से भी कई बार काफी बयानबाजी होती है, प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि उनको टारगेट किया जा रहा है।
यहाँ पे सभी लोग अपना विकास चाहते हैं, यहाँ पे जनता का क्या प्रॉब्लम है कोई नहीं समझना चाहता, चाहे वो कोई भी पार्टी के हो, जेडीयू हो या आरजेडी हो या बीजेपी हो, यहाँ पे सिर्फ अपना विकास चाहते हैं नेता लोग।
जी आपका नाम?
अरविंद कुमार, अरविंद कुमार गुप्ता।
अरविंद जी ये बताइए कि पिछले कुछ दिनों में बिहार में जो चर्चा हुई है, बिहार में जिस तरह की बयानबाजी हुई है, उससे एक आम नागरिक होने के नाते आप क्या सोच रहे हैं, क्या आपको ये अफेक्ट कर रही है?
जी बहुत अफेक्ट कर रही है, ये यहाँ पे विकास पीछे छूट रहा है और एक जातिवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है, यहाँ हर मुद्दे पे जो मुद्दा है वो पीछे छूट रहा है और यहाँ पे लोग अपनी अपनी जातिवाद दिखा रहे हैं।
ये बताइए कि जिस तरह प्रधानमंत्री होते हुए भी नरेंद्र मोदी पर सवाल उठ रहे हैं कि किस तरह के बयान दे रहे हैं, और बिहार में जिस तरह उनका स्टेक है, इतनी रैलियां कर रहे हैं, कहीं आपको लगता है कि दोनों पार्टियों ने बहुत ज्यादा प्रतिष्ठा का प्रश्न बना दिया?
बहुत ज्यादा प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया, मतलब एक माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा ऐसा बयान बहुत उल्लेखनीय है, उनके द्वारा ऐसा बयान नहीं होना चाहिए।
जी तो मोहन लाल जी, जैसे आप सुन रहे हैं यहाँ पे लोगों की मिली जुली राय है, और हमारे साथ जी आपका नाम क्या है?
ओम प्रकाश
जी, आपने सुनी हम जिस पे चर्चा कर रहे हैं कि बिहार में जिस तरह के चुनाव प्रचार हो रहे हैं उसमें क्या वाकई जनता की उम्मीदों का ख्याल रखा गया है?
जनता के उम्मीदों को तो ख्याल रखा ही नहीं गया, केवल अपना अपना स्वार्थ हम लोग देख रहा है।
लेकिन आप लोग एक जागरूक मतदाता भी हैं, तो मतदान करते समय आप किन चीजों का ख्याल रखेंगे?
हम लोग तो यही सोचेंगे कि भाई ऊपर अगर तो मतलब अच्छा आदमी बने जो हम लोग का देख देख कर सके।
और हमारे साथ इस समय जी आपका किस शुभ नाम क्या हुआ?
संतोष कुमार सिंह।
संतोष जी, हम लोग चर्चा ये कर रहे हैं कि बिहार में जिस तरह मतदान चुनाव प्रचार के दौरान बयानबाजियां हो रही हैं, विकास की चर्चा शुरू हुई थी जब भाजपा ने भी कहा और नीतीश कुमार को भी प्रोजेक्ट किया गया, लेकिन एकाएक वो सारी चीजें पीछे छूटती जा रही है।
ये सर हमेशा अपनी मर्यादा में रख के ही किसी भी नेता के लिए अशोभनीयता बात नहीं बोलनी चाहिए, भारतीय जिसको विश्व में एक अलग पहचान है उसके मर्यादा को रख करके कभी भी गलत अल्फाज नहीं निकलने चाहिए। लेकिन हमारे सारे नौजवानों को मोदी जी से बहुत उम्मीद है, आने वाले दिन में उनके नेतृत्व में पूरे भारत के नौजवान एक समूह में जाएंगे और भारत को पूरे विश्व में।
लेकिन आपको नहीं लगता कि मोदी जी प्रधानमंत्री और बिहार के कैंपेन को लीड भी कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी उनके एक तरह से नेतृत्व में बिहार में भी प्रचार
आदमी है,
आपको नहीं लगता कि प्रधानमंत्री को अपने नेताओं को अपने मंत्रियों को थोड़ा काबू करना चाहिए?
बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने प्रयास भी किया है, गृह मंत्री जो है राजनाथ सिंह उन्होंने भी प्रयास किया है, ये कुछ ऐसे मंत्री है जो मोदी जी के नेतृत्व को दाग लगा रहे हैं, उनको ये सबक लेना।
लेकिन तो मोदी जी पे भी सवाल उठ रहे हैं कि उन्होंने लालू प्रसाद यादव की बेटी को बोल दिया मीसा भारती को कि आपके पिताजी ने आपको सेट करने की कोशिश की थी पिछले लोकसभा चुनाव में, वो सेट नहीं कर पाए और अब दोनों बेटों को सेट कर।
चार बातें मोदी जी की भी अच्छी नहीं लगी, एक तो ये कि उन्होंने ये कहा कि ये डीएनए वाली बात ये भी शोभनीय नहीं थी, दूसरे विदेश में जाके भी आंसू बहाने ये भी मुझे नहीं चला क्योंकि हम लोग उनसे प्रेरित हैं।
मतलब आप ये कह रहे हैं जो विदेशों में जाकर भारत की बात करते हैं मोदी जी। लेकिन चलिए अब बिहार पर हम केंद्रित रखते हैं। जी आपका नाम क्या हुआ? जी आपका नाम
बोलिए। जी मेरा नाम विजय सराफ हुआ।
जी विजय जी, ये बताइए कि आप एक व्यापारी वर्ग से आते हैं, रक्सौल की समस्याओं की बात कितना उम्मीदवार करता है, क्या यहाँ भी उसी तरह की चर्चा होती है जिस तरह राज्य स्तर पर चुनाव प्रचार हो रहे हैं?
नहीं ऐसा नहीं है, यहाँ वैसा नहीं है, यहाँ जो भी है सो ढंग की बात होती है, हमारे विधायक जी पूर्व विधायक जी जो भी बात करते हैं सबके लिए वो वोट भी मांगने जाते हैं, कहते हैं सबको वोट मिलजुल करके दें।
जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका मोहन लाल
जी,
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 तो
जी,
रक्सौल से इतनी बात, यहाँ बहुत लोग हैं जो अपनी अपनी राय व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन सब कोई कम से कम एक मुद्दे पर सब एकमत है कि इस तरह की बयानबाजी से हर पार्टी के नेताओं को बचना चाहिए,
हर पार्टी के नेताओं को बचना चाहिए। उर्मिलेश जी, जनता की आवाज़ हमने सुनी और जनता कह रही है कि भाई इस तरह की बयानबाजी से बचना चाहिए, लेकिन मेरा सवाल ये है, जनता जब वोट डालने जाती है तो क्या इन बयानों का उस पर कोई असर होता है कि नहीं होता है?
देखिए आमतौर पर बिहार जैसे राज्य में लोग जो वहाँ के हैं काफ़ी गरीब हैं, आमतौर पर अगर देखा जाए बिहार में गरीबी बहुत है, पिछड़ापन बहुत है, लेकिन संजोग देखिए या एक बहुत अचरज की बात है कि राजनीतिक समझदारी उनमें सबसे ज़्यादा है, कई बार हम आश्चर्यचकित
मतलब वोट डालने जाएंगे तो वो बयानबाजी भूल जाएंगे।
नहीं, बिल्कुल वो अपने राजनीतिक दृष्टिकोण से लोग वहाँ वोट डालते हैं। कुछ परसेंटेज हो सकता है जहाँ लोग किसी अफवाह के आधार पर, किसी भ्रम के आधार पर, किसी को भरमाने के आधार पर वोटिंग कर दें, लेकिन मैं बिहार को जितना कवर किया हूं अपने एक रिपोर्टर के तौर पे, एक पत्रकार के रूप में लंबे समय से, मैंने देखा कि राजनीतिक रूप से इतने समझदार लोग, इतने मैच्योर लोग, इतने प्रौढ़ लोग बहुत कम सूबों में दिखाई
देते हैं। यानी कि जब वोट देने जाएंगे तो वो तय करके जाएंगे किसको देना है। कार्यक्रम में एक श्रोता को शामिल कर रहे हैं जी, नाम बताएं और कहां से बोल रहे हैं आप?
विवेक शर्मा सर, छपरा से।
हां विवेक शर्मा जी, छपरा से कार्यक्रम में बोल रहे हैं, शामिल हो चुके हैं, अपनी राय रखिए आप।
जी सर, नेता सर कोई भी हो सर, विकास के मुद्दे सर लेकर चुनाव में आते हैं, लेकिन सर विकास के मुद्दे भूल जाते हैं। चुनाव खत्म होते होते सर अपने वादे भूलते जाते हैं, प्लस में विकास भी कोई नेता विकास करता ही नहीं है। जैसे नीतीश कुमार बिहार में हुए, ये बहुत सारे पिछले दस साल में बहुत सारे विकास किए, लेकिन उतना विकास जितना चाहिए उतना हुआ नहीं है। चाहे जितना भी यहाँ के नौजवान हो, सारे लोग बाहर ही जाते हैं किसी भी काम के लिए, यहाँ विकास सर होता ही नहीं है सर। तो फिर विकास यहाँ होंगे क्या सर? वादे करते जाते हैं लेकिन सर वादे पूरे नहीं करते हैं, चाहे नेता कोई भी हो, सभी तो सर एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं,
सब एक थैली के चट्टे बट्टे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। एक श्रोता को और शामिल कर रहे हैं कार्यक्रम में, नाम बताएं और कहां से अपनी राय रखना चाहते हैं आप?
हेलो
जी, हाँ नाम बताएं।
जी नमस्कार सर, मैं कुलवीर भट्ट बोल रहा हूँ, गाँव बिरान तहसील बदरन जिला मनगढ़ राजस्थान से।
राजस्थान से बोल रहे हैं जी। जी बिहार के चुनावों की बात हो रही है आज?
नहीं, बिहार के चुनाव की बात हो रही है, लेकिन जो मीडिया है वो तो सब दिखा रहा है ना, हम भी तो देख रहे हैं। मैं बोलना चाहता हूँ कि जो बिहार का चुनाव, उसमें हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी अपनी प्रतिष्ठा दांव पर लगा रखी है। प्रधानमंत्री भी ऐसे बयान दे रहा है जो सौराष्ट्र है भारत में, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से ज्यादा मान है भारत में, उसने भी अपनी प्रतिष्ठा एक बिहार चुनाव के दांव पर लगा रखी है। वो भी ऐसे बयान दे रहा है, हद पार कर रखा है मोदी जी ने। औरों की बात तो थोड़ी है, वो मुख्यमंत्री है, राज्य मंत्री है, वो अपने चुनाव के लिए दांव लगा रहे हैं, लेकिन मोदी जी को इस बिहार चुनाव के लिए अपने प्रतिष्ठा दांव पर नहीं लगानी चाहिए।
जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और मिले जी, मोदी जी को क्या आन पड़ी कि अपनी जो प्रतिष्ठा है वो लगा दे दांव पर?
नहीं,
और ऐसा लग रहा है, ऐसा इस चुनाव को देखकर लग रहा है, क्योंकि ये सीधा मोदी बनाम का मामला है।
हाँ मोहनलाल जी, देखिए मैं समझता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के स्टार कैंपेनर हैं और हर जगह पूरे देश में हैं, प्रधानमंत्री हैं, उनका कर्तव्य बनता है अपनी पार्टी के उम्मीदवारों को चुनाव जिताने का, ये तो है, इसमें कोई दो राय नहीं, यहाँ तक वो ठीक है। लेकिन जो आमतौर पर आज़ादी के बाद से लेकर आज तक भारत के किसी प्रधानमंत्री ने, चाहे वो वाजपेयी जी हों, चाहे नेहरू जी हों, इंदिरा जी हों, देवगौड़ा जी हों, चंद्रशेखर जी हों, या बीपी सिंह, कोई भी प्रधानमंत्री, या इवन मनमोहन सिंह तो खैर वक्ता नहीं थे उस तरह से, कोई अपने को इस तरह नहीं इन्वॉल्व करता है राज्यों के चुनाव में जिस तरह आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। अब उसमें हो ये रहा है कि उनकी पार्टी की जो क्षेत्रीय और स्थानीय जो लीडरशिप है वो भी इमर्ज नहीं कर पा रही है, जनता के सामने उसकी छवि नहीं जा पा रही है, तो कहीं ना कहीं मोदी जी का जो सेंट्रलाइजेशन है पॉलिटिक्स में और पूरे सोच में भी, जो लेखकों के साथ, बुद्धिजीवियों के साथ, वैज्ञानिकों के साथ, संस्कृति कर्मियों के साथ, पूरे क्षेत्र में जो दिखाई दे रहा है वो अपनी पार्टी के अंदर भी दिखाई दे रहा है। तो मैं समझता हूँ इनको रिव्यू करना चाहिए, जो आपके श्रोता कह रहे हैं वो गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि ये एक आदमी की आवाज़ नहीं है, असंख्य लोगों की आवाज़ है। सुशील मोदी कहाँ है आज आप बताइए, सीपी ठाकुर कहाँ है आज आप, नंदकिशोर यादव कहाँ है, कौन देखता है, कौन जानता है राजीव प्रताप रूडी को? तो ये एक प्रॉब्लम जरूर मोदी जी ने पैदा की है अपनी पार्टी।
यहाँ पर मैं कार्यक्रम में फिर से शामिल कर रहा हूँ पंकज प्रदर्शी को। पंकज जी आप कार्यक्रम सुन रहे हैं, उर्मिलेश अभी एक बात ये कह रहे हैं कि जो सुशील मोदी गायब हैं, जो दूसरी पंक्ति के नेता हैं सारे के सारे गायब हैं, क्या मैदान में?
नहीं, वो सूबे में पहली पंक्ति के नेता हैं।
हाँ पहली हाँ सूबे में पहली पंक्ति के नेता हैं, लेकिन ये बताइए पंकज, आप लगातार इस इलेक्शन को कवर कर रहे हैं, ये जो पहली पंक्ति के नेता हैं बिहार में, ये कुछ इनकी चर्चा होती भी है या सिर्फ बड़े नेताओं की चर्चा हो रही है?
जी मोहनलाल जी, बड़ी रोचक सवाल पूछा आपने। आपको जानते ये आश्चर्य तो नहीं कहना चाहिए, क्योंकि आप ये नोन फैक्ट है कि बिहार के जितने भी बीजेपी के सेंट्रल नेता हैं, मंत्री हैं, सब यहाँ कैंप कर रहे हैं। रविशंकर प्रसाद की बात करें, राधा मोहन सिंह की बात करें, और अभी उर्मिलेश जी चर्चा कर रहे थे राजीव प्रताप रूडी की, तो ये कल मैं राधा मोहन सिंह जी से मिला भी था, मैंने उनसे पूछा भी था कि इतना बड़ा स्टेक क्यों है कि आप कृषि मंत्री होते हुए आप कैंप कर रहे हैं, लग रहा है कि आपकी प्रतिष्ठा दांव पर है। तो सेंट्रल लीडरशिप की ओर से, अमित शाह की ओर से, सारे मंत्रियों को, बिहार के जो बड़े नेता हैं, शीर्ष नेता हैं, सबको अपने अपने क्षेत्र में काम सौंपा गया, और जानते हैं बीजेपी का रूट जो है कार्यकर्ताओं की पार्टी कही जाती है। लेकिन जो दूसरा अहम सवाल आप पूछ रहे हैं कि क्या इन नेताओं की चर्चा होती है, बहुत कम चर्चा है। और जहां भी मोदी की रैली होती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, वही देखना, अगर इस बिहार चुनाव में बीजेपी पूरी तरह नरेंद्र मोदी पर केंद्रित है, आश्रित है, और सच पूछिए तो मोदी जी ने अगर अपनी प्रतिष्ठा दांव पे लगा रखी है तो बीजेपी ने अपनी सारी प्रतिष्ठा नरेंद्र मोदी के दांव पे लगा रखी है, क्योंकि उनके जो जितने भी स्टेट लीडर्स हैं वो चुनाव प्रचार भी करते हैं, खूब कर रहे हैं। रविशंकर प्रसाद हर रैली में जा रहे हैं, नितिन गडकरी भी आ रहे हैं वहां से, राधा मोहन सिंह है, राजीव प्रताप सिंह है, सब है, लेकिन उनका इम्पैक्ट कितना है इस पर बहुत बड़ा सवाल यह निशान है।
जी पंकज, बहुत बहुत शुक्रिया। उर्मिलेश, कार्यक्रम में हम आगे चर्चा जारी रखेंगे, श्रोता को यहाँ पर हम शामिल कर रहे हैं। जी नाम बताएं और कहाँ से बोल रहे हैं आप?
हेलो, मैं संदीप बात कर रहा हूँ पुणे से।
हाँ संदीप जी, पुणे से आप बात कर रहे हैं जी।
हाँ हाँ, तो यहाँ पे मेरा सवाल है कि ये जब पार्टी की शीर्ष कैडर की लीडरों की बात होती है, हेलो
जी, हाँ जी, हम बात सुन रहे हैं आपकी।
शीर्ष कैडरों की लीडर की बात होती है तो अगर बेसिक बिहार की जो लोकल पार्टियां उनके भी बारे में बात की जाए तो वो सारी भी अपने शीर्ष नेताओं पर ही डिपेंड है। नीतीश कुमार को ही ले लीजिए या आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद को ही ले लीजिए, तो इस पे ज्यादा फोकस नहीं होनी चाहिए। बट ये चीज डिपेंड करता है कि इसका इफेक्ट कितना हो रहा है, और मिलेश जी डिटेल में बताएंगे
जी कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया, पुणे से हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल थे। भाई ये कह रहे हैं कि हर कोई नेता अपनी बात कर रहा है, हर कोई अपनी तलवार भांज रहा है, इसका इम्पैक्ट पड़ता भी है या नहीं पड़ता है?
नहीं देखिए, उसमें दोनों में फ़र्क है। नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव दोनों बिहार के अपने नेता हैं, वो बिहार की ज़मीन के अपने नेता हैं। आदरणीय मोदी जी राष्ट्रीय नेता ही नहीं बल्कि भारत के मुख्य कार्यकारी शक्ति हैं, प्रधानमंत्री हैं। तो जब अब आप सवाल यह है कि लालू प्रसाद के सामने और नीतीश कुमार के सामने चेहरा बीजेपी का किसका है? नरेंद्र मोदी जी का है, अमित शाह जी का है, प्रधानमंत्री दोनों, मुख्यमंत्री दोनों को नहीं बनना है। तो ये दोनों में फ़र्क है, जो वो कह रहे थे हमारे साथी, उसमें एक फ़र्क है। दूसरी बात यह है कि अब पूरी कैबिनेट, काफ़ी बड़ी संख्या कैबिनेट के मंत्रियों की, अगर साउथ इंडिया से आने वाले कैबिनेट मंत्रियों को छोड़ दिया जाए तो सभी लोग वहाँ जा रहे हैं और लगातार कैंप कर रहे हैं। तो ये एक जो पूरी, अब जैसे कई बार तो हमको आश्चर्य होता है कि जो कैबिनेट के बहुत इंपॉर्टेंट मिनिस्टर हैं अपना काम छोड़कर वहाँ चले जाते हैं, काम छोड़कर चले जाते हैं। अब देखिए इस समय पूरे देश में संचार मंत्रालय जो है वो कॉल ड्रॉप मिनिस्ट्री बन गई है। ऐसा लगता है किसी से आप पूछ लीजिए, मैं तो बीजेपी के कई बड़े नेताओं से जब बात करता हूँ तो वो भी कहने लगते हैं यार ये तो कॉल ड्रॉप मिनिस्ट्री हो गई है, बहुत बुरी हालत है। लेकिन कोई इसमें सुधार नहीं है बहुत सारी चीज़ों में। तो मुझे लगता है कि इन चीज़ों पर भी तवज्जो दी जानी चाहिए कि भाई कहीं चुनाव हो रहा है। अब चुनाव तो बंगाल में होने वाला है, चुनाव तो उत्तर प्रदेश में होने वाला है, तो क्या एक एक प्रदेश के चुनाव के लिए पूरी की पूरी केंद्र सरकार की फंक्शनिंग प्रभावित होने दी जा सकती है? यह भी एक सवाल है। बहरहाल सबको अधिकार है चुनाव में जाने का, लेकिन इस बार बिहार में कुछ अति दिखाई दे,
कुछ अति दिखाई दे रहा है। उर्मिलेश जी आप ये बात कह रहे हैं कुछ अति दिखाई दे रहा है, पंकज जी आपके पास आ रहे हैं।
हेलो,
हाँ पंकज प्रदर्शी, एक सवाल आपसे जानना चाहते हैं। उर्मिलेश कह रहे हैं कि इस बार बिहार के चुनावों में कुछ ज्यादा ही अति दिखाई दे रहा है, मैं चाहता हूँ संक्षिप्त टिप्पणी करें आप इस पे।
हाँ बिल्कुल सही बात है, और अति मेरे हिसाब से जो अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो निरपेक्ष होकर बात करें तो अति उनकी ओर से ज्यादा है, लेकिन दूसरा पक्ष भी कम पड़ना नहीं चाहता। मैं कई महागठबंधन के पार्टी कार्यालय में गया हूँ जिनके वॉर रूम जो कह रहे हैं सोशल मीडिया पर कह रहे हैं, वो ऐसे ऐसे गड़े मुर्दे निकाल कर और जवाब देने की तीर जो है तर्कश से निकाले जा रहे हैं।
जैसे डेढ़ साल पुराना नीतीश मुख्यमंत्री का वो वीडियो निकाल दिया।
जी जी बिल्कुल, तांत्रिक का वीडियो आया तो आज आप देखेंगे इसको मीसा भारती की ओर से वो वीडियो जारी हुआ है जिसमें नरेंद्र मोदी एक इंटरव्यू के दौरान अपने शिक्षा की बात कर रहे हैं। लेकिन बयानबाजी के स्तर की बात करें मोहनलाल जी, तो हाँ इसमें बीजेपी कोसों दूर है, लेकिन महागठबंधन के लोग भी उनको कड़ी टक्कर दे रहे हैं, कहीं भले ही पिछड़ रहे हैं बयानबाजी से लेकिन कड़ी टक्कर दे रहे हैं।
जी कड़ी टक्कर दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज प्रदर्शी सीधे कार्यक्रम में शामिल होने का, आपका यहाँ पर धन्यवाद करेंगे। यहाँ पर एक श्रोता को हम शामिल करेंगे और पूछेंगे कि वो क्या कहना चाहते हैं। जी नाम बताएं और अपनी राय रखें आप।
रोशन खान बोलो, बाड़मेर राजस्थान से।
रोशन साहब
जी,
जी राय रखिए आप।
हम ये राय रख रहे हैं ये बीजेपी वाले जो नेता हैं ये विकास की बात करते नहीं, ये सिर्फ धार्मिक पे जाते हैं, बीफ पे जाते हैं, कहीं पाकिस्तान पे जाते हैं, इस तरीके से लोगों को वोटों पर लुभाने की बात करते हैं। विकास के बारे में यूँ भी नहीं कहते कि ये विकास करेंगे आप हमें वोट दो, बस यही कहते हैं हम धार्मिक ये करेंगे, हम वो बाबरी का ये करेंगे, हम राम मंदिर ये कर लेंगे।
नहीं, आपकी बात काफी जायज है और भारत के मॉडर्न सोसाइटी में आधुनिक समाज जो भारत बन रहा है उसके लिए ये एक चिंता की बात है कि जो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो भी धार्मिक सांप्रदायिक और जातीय आधारों को लेकर इतना ज़्यादा फोकस कर रहे हैं चुनाव में, ये कहीं ना कहीं हमारी डेमोक्रेसी के लिए खतरनाक है, चाहे जो पार्टी कर रही हो, इसमें किसी एक पार्टी की बात नहीं है। देखिए, एक ज़माना था 99 में जब उस समय के इलेक्शन कमीशन ने, जिसमें मनोहर गिल थे, एमएस गिल थे और लिंगदो साहब थे,
बाल ठाकरे ने
धार्मिक और सांप्रदायिक विद्वेष पैदा करने की कोशिश की थी चुनाव में और उन्होंने धार्मिक आधारों पर वोट मांगा था, इसी के कारण उनको 6 साल के लिए संभवतः प्रतिबंधित कर दिया था, न केवल चुनाव में लड़ने से बल्कि मतदान करने से भी। अभी जरूरत यह है कि हमारा निर्वाचन आयोग, जो देश की सर्वोच्च निर्वाचन की संस्था है, संवैधानिक संस्था, उसको भी कड़े कदम उठाना चाहिए, तभी ये सारी डिस्टॉर्शंस खत्म होंगे।
एक श्रोता को शामिल कर रहा हूं कार्यक्रम में, नाम बताइए और कहां से बोल रहे हैं आप?
नमस्कार, मैं डिब्रूगढ़ असम से उमेश कुमार बोल रहा हूं।
हाँ उमेश कुमार जी, असम से आपका स्वागत है।
जी, सबसे पहले तो असम से बीबीसी को और सभी को मैं स्वागत करता हूं।
जी बहुत बहुत शुक्रिया, अपनी राय रखें।
भारत की जनता और हम लोग सभी हैं सर, केवल हमें चटपटा मसाला ही पसंद है, भ्रमित करने वाले विज्ञापन की तरह से जनता को लुभाया जाता है, असली मुद्दा कहीं दब कर रह जाता है, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, किसान की समस्या, महंगाई, बेरोजगारी, जनसंख्या वृद्धि, हाँ। इसे तो कोई छूना भी पसंद नहीं करता है सर
जी।
और केवल धर्म संप्रदाय, धार्मिक सांप्रदायिकता को मतलब किसी भी तरीके से ये लोग इनडायरेक्टली अपने मुद्दे बना करके उसका ध्रुवीकरण करते हैं।
मुकेश जी बहुत बहुत शुक्रिया, चटपटी बातें हम सबको बड़ी पसंद आती हैं। एक श्रोता को और शामिल कर रहा हूं, समय कम है जी, नाम बताएं और कहां से बोल रहे हो, संक्षेप में अपनी बात रखें।
हाँ जी,
कहां से बोल रहे हैं?
सीताराम राय, ग्राम मथुरा, जिला गाजीपुर, उत्तर प्रदेश से।
हाँ सीताराम जी, स्वागत है आपका, अपनी राय रखिए।
मोहनलाल जी नमस्कार।
नमस्कार,
समय तो कम मिला है, हम ये कह रहे हैं
जी
कि मैं मोदी जी को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ जो विकास की बात ले आए अपने मंच पर, और आज जो तहलका मचा हुआ है, वास्तव में लोग जो है बहस कर रहे हैं, वो ऐसा नहीं है कि मुद्दे से भटक के बहस कर रहे हैं। अब मनसा बचा कर्मणा, ये तीनों युद्ध लगा हुआ है तो तीनों स्तर पर तो लड़ना ही पड़ेगा, तो जो है वो तो लड़ना ही पड़ेगा, बिना लड़े तो जवाब नहीं दिया जा सकता है। लेकिन सच ये है कि विकास का मुद्दा ही मुख्य मुद्दा है जो कि चल रहा है। अभी लोग विकास का मतलब काम, और काम हर जगह हो रहा है और काम बड़ी तेजी से हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसको कोई नहीं झुठला सकता है, उन्मिलेश जी भी नहीं झुठला सकते हैं कि 1.5 साल के अंदर हर प्रदेश में कितना विकास हुआ है।
जी बहुत बहुत शुक्रिया सीताराम जी, इनका जो कहना है वो एकदम साफ है कि भाई मुद्दा तो है, और साम दाम दंड भेद जब आप युद्ध के मैदान में जाते हैं तो सब कुछ इस्तेमाल करना पड़ता है, और इसलिए इस्तेमाल हो रहा है।
नहीं, ये गलत सोच है, और मैं विनम्रता पूर्वक कहूँगा कि जब भारत में हम इलेक्शंस को एक निष्पक्ष ढंग से, निर्भीक ढंग से, स्वतंत्र ढंग से कराने संचालित करने की बात करते हैं, तो उस चुनाव में जो सांप्रदायिक विद्वेष के मसले हैं, जो जातिगत विद्वेष के मसले हैं, जो गैर जरूरी विभाजनकारी मुद्दे हैं, उनको अवॉइड किया जाना चाहिए। अब सवाल उदाहरण के तौर पे मैं बहुत ठोस उदाहरण दूं, अब आप कह रहे हैं कि बिहार के चुनाव में अगर बाई चांस बीजेपी हारी, मैं साफ कहता हूँ तो पाकिस्तान में पटाखे खुलेंगे। अब इसका क्या तुक है? क्या बिहार की जनता को आप धमकी दे रहे हैं, आप चेता रहे हैं कि तुम अगर हमें हराओगे तो तुम पाकिस्तानी साबित हो जाओगे, पाकिस्तानी की तरह बन जाओगे? मुझे लगता है इससे ज्यादा घोर आपत्तिजनक बात इस चुनाव के दौरान मैंने कुछ भी नहीं सुनी, और ये निर्वाचन आयोग ने इस पर बहुत ही कोमल, बहुत ही उदार ढंग से टिप्पणी की है, इसके अलावा उसने कोई बड़ी बात नहीं कही, तो ये आश्चर्यजनक है।
जी जी,
मुझे टीएन शेषन याद आ रहे हैं आज।
उर्मिलेश जी, समय बिल्कुल नहीं है, शशि मेहता की टिप्पणी है फेसबुक से, इसी टिप्पणी से मैं इस कार्यक्रम का समापन करूंगा। विकास चाहता ही कौन है, हर पार्टी ध्रुवीकरण करना चाहती है। बहुत बहुत शुक्रिया उर्मिलेश जी, और उन सभी श्रोताओं का शुक्रिया जो कार्यक्रम में शामिल हुए, उनसे माफी जिन्हें हम शामिल नहीं कर पाए। कार्यक्रम में विदा लें इससे पहले मुख्य समाचार।
बीबीसी समाचार। मिस्र में रूस का एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। दुर्घटनाग्रस्त रूसी विमान पर सवार सभी 224 लोगों की मौत हो गई है। उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया है। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने 11 नए मंत्रियों को मंत्रिमंडल में शामिल किया है। चरमपंथियों द्वारा मारे गए धर्मनिरपेक्ष बांग्लादेशी ब्लॉगर अभिजीत रॉय के प्रकाशक पर राजधानी ढाका में उनके दफ्तर पर ही हमला किया गया है। इसके कुछ घंटों बाद एक अन्य प्रकाशक फैसल आरिफिन दीपोन की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। बीबीसी समाचार।
तो बीबीसी इंडिया बोल के इस अंक में बस इतना ही। आज स्टूडियो संभाल रहे थे देवाशीष। अगले कार्यक्रम यानी कि घटना चक्र में हम आपसे फिर मिलेंगे। मोहनलाल शर्मा को विदा दें। नमस्कार।